के बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने युवा काल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन किया। साकार बाबा के टाइम, मम्मा के टाइम से आपने ज्ञान का मनन चिंतन किया। 1962 में आप बाबा के लाडले नूरे रत्न बन गए। तभी से लेकर आप निरंतर बेहद यज्ञ की सेवाएं समर्पण भाव से करते रहे। वरिष्ठ दादियां, वरिष्ठ भाई बहनों के आप अति प्रिय रहे। कार्य सेवा करते हुए आप दोनों सेवाओं का संतुलन बनाए रखा। जब ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ उस समय आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर संपूर्ण समर्पण अपने जीवन का किया। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। ऐसी कुमार जीवन की गहन अनुभूति साकार बाबा के अंतिम पलों में आप साथ थे, सन्मुख थे। उन्हीं को हमारे सम्मुख सचित्र वर्णित करते हुए आज हमें प्रकाश डालेंगे। ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था से हम अपनी संपन्नता को कैसे प्राप्त करें। आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी।
ओम शांति। हम सभी एक बार मिल करके उस रीति से ओम ध्वनि करते हुए ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसा यज्ञ के आदि में हम सबने सुना है। ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके किया करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी श्वास गहरी लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति की इस ध्वनि में ही सारा राज का समाया हुआ है। पहले दिन भी जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आता है कोई तो उसे यही पाठ पढ़ाया जाता है कि आप आत्मा शांत स्वरूप हो, ओम शांति। और अंतिम श्वास तक जब तक वह पुरुषार्थ करता है तो इसमें स्थित होने का अभ्यास करता है और इसमें स्थित होने के अभ्यास में ही सारा जीवन निकल जाता है। इसलिए ये ओम शांति पहले दिन से ही और अंतिम समय तक पूरी हमारी अवस्था को बनाने में बहुत ही सहायक है। जब भी यहाँ मधुबन में यहाँ आते हैं, आप सबका भी अनुभव होगा, भले साकार बाबा से कोई मिले हो न भी मिले हो, अधिकतर तो नहीं भी मिले होते, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है। हमारे वरिष्ठ बाबा मामा के अलावा भी और भी जो दादियां आदि हैं, बड़ी दीदी, सबकी कर्म भूमि चरित्र भूमि रही है। इसलिए यहाँ के वातावरण में जो स्पंदन है वो बहुत ही शक्तिशाली स्पंदन है। एक वैज्ञानिक होने के नाते भी यहाँ पर एक बार मैंने देखा, एक कोई टीम आई हुई थी, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था और वो मीटर एक लगा हुआ था और वो यही करा करते थे जो भारत की आध्यात्मिक भूमियां हैं, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, वहां पर जा करके वो वहां का स्पिरिचुअल एनर्जी का मेजरमेंट किया करते थे। चूंकि बहुत समय की बात है इसलिए मुझे उसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो याद नहीं है, किस यूनिवर्सिटी से या कहां से ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, लेकिन यहां का वो बता रहे थे कि जैसे ही गेट में प्रवेश किया तो वो मीटर जो है बहुत हाई वो एनर्जी दिखाने लगा, और जैसे ही वो बाबा के कमरे में गए तो मीटर वो जितना मीटर की रेंज थी उससे आउट ऑफ रेंज हो गया, लास्ट में चला गया। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी का को दर्शाता है कि पूरे इसके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और हम सभी जानते हैं कि इस आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत यहाँ पर जो हमारे ब्रह्मा बाबा होके गए हैं, अव्यक्त रूप में तो वो अभी भी हैं ही, लेकिन साकार रूप में जो भी पार्ट बजाया उनके ही मुख्य कारण से ही यहाँ स्थिति से ही ऐसा संभव हो सका। तो ये मुझे कुछ अपनी आंखों से देखने का काफी सौभाग्य मिला, क्योंकि जब से 1962 से हम ज्ञान में आए थे तब से मधुबन में बार बार आने का मौका मिला, और ब्रह्मा बाबा के साथ तो अनेक अनेक बार, चाहे यहाँ हो, कानपुर हो, दिल्ली में हो, जहाँ भी कई बार बाबा के साथ रहने का मौका मिलता रहा। तो वैसे तो ये अध्याय बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उन अंतिम दो दिनों का कुछ वर्णन करना चाहूंगा कि जब बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और जो मैंने यहाँ देखा, और चूंकि हम सभी का भी लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था की प्राप्ति, हम सभी वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए हम उस रीति से इसे सुने और अपने से लगाकर देखते चलें कि मैं भी कैसे उस अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर पाऊं। आज की मुरली भी हम सब जो सुन रहे थे सुबह, उसमें भी बाबा ने कई बातें ऐसी बताई जो अंतिम स्थिति से लगते हुए भी थी। कौन सी ऐसी बातें विशेष करके हर मुरली में ही होती है वैसे तो, हैं? अशरीरी स्थिति का अनुभव, और क्योंकि ये तो रहता है, एक तो बाबा ने कहा जो कि अंतिम समय के लिए बच्चों की साक्षी स्थिति का होना जरूरी है, याद है ना, और उसमें दो बातें विशेष बताई थी किन किन चीजों में साक्षी, दो बातों में आज की ही मुरली में, कि किस बात में साक्षी स्थिति, कौन सी बात में। एक तो बाबा ने कहा था कि जो एग्जाम परीक्षा होंगे उसके उसमें बहुत साक्षी स्थिति की आवश्यकता है, क्योंकि साक्षी स्थिति में भी दो, एक तो परीक्षा के पेपर कि हम ही हैं जो क्लब पहले पास हुए थे, अभी भी पास हो रहे हैं और क्लब क्लब ऐसे विजयी बनते रहेंगे। इसके अंदर बहुत आवश्यक है ये स्मृति का होना। और साथ ही साथ साक्षी में बाबा ने दूसरी बात बताई थी विनाश के दृश्यों की, क्योंकि जब विनाश होगा हमारे सामने ही हमारे प्रियजन, वो विनाश की ज्वाला में हम सब खुद भी उसमें जो ग्रसित हो रहे होंगे, तो उस समय साक्षी स्थिति बहुत आवश्यक है। क्योंकि उस समय थोड़ा भी लगाव झुकाव मोह हुआ जिनके प्रति, और उनको जब देखेंगे कि वो शरीर छोड़ रहे हैं या बहुत सफर कर रहे हैं, तो उससे हमारी स्थिति भी डावाडोल होने की संभावना है। इसीलिए बाबा कहता है एक तो साक्षी अंत समय के लिए ये ऐसा साक्षी दृष्टा होना ये बहुत ही बहुत आवश्यक है। और इस साक्षी स्थिति के लिए और क्या करना है हम सब बच्चों को, विशेष करके इस साक्षी स्थिति के लिए हमें मुख्य रीति से पांच बातों का बहुत ख्याल करना है। साक्षी स्थिति के लिए कैसे हमारी साक्षी स्थिति रहे, और वो तो बताएंगे कि ब्रह्मा बाबा की भी कैसे साक्षी स्थिति हमें पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली। तो साक्षी अवस्था में एक तो जब साक्षी दृष्टा कहते हैं हम, तो साक्षी दृष्टा, दृष्टा कौन है? आत्मा। अक्सर करके दृष्टि को हम कह देते हैं, लेकिन ये दृष्टि तो एक खिड़की है, दृष्टा तो आत्मा है। तो आत्मा इस खिड़की से देख रही है। जब ऐसी स्थिति में रहेंगे तो धीरे धीरे साक्षी दृष्टा होते जाएंगे। देखने वाली आत्मा ये दृष्टि के द्वारा देख रही है। दूसरी बात इसमें, जब ये दृष्टा आत्मा है, ये दृष्टि है। तीसरी बात कि जो दृष्टि और दृष्टा हम जो देख रहे हैं वो बाहर के ये दृश्य देख रहे हैं। तो जैसे ट्रेन में जाओ या बस में जाओ, दृश्य आते हैं चले जाते हैं, किसी की तरफ हम वहीं पर खड़े नहीं हो जाते, जितना भी अच्छा हो या खराब दृश्य हो पास हो जाता है। ऐसे ही जीवन में भी यही रहे कि जो हो रहा है वो दृश्य है और आ रहा है जा रहा है, बस ये दृश्य, ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो दृश्य भी परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। एक ये स्थिति रहे, कोई भी हो, स्वभाव संस्कार संबंधी कोई भी, तो किसी में भी अटके नहीं, वो दृश्य देख रहे हैं। चौथी बात कि ये सब देखने का आधार किस पर है? हमारे दृष्टिकोण पर, एटीट्यूड। अगर हमारा अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो हमें हर दृश्य में पॉजिटिविटी ही नजर आएगी, सकारात्मकता अनुभव होगी, उसमें कोई भी नकारात्मकता नेगेटिविटी दिखाई ही नहीं देगी। तो हमारा दृष्टिकोण कैसा रहे? अधिकतर पॉजिटिव ही जीवन के प्रति रहे। और इसके आधार पर क्या होगा कि द्वापर युग से जो लिखे जाएंगे सारे स्क्रिप्चर्स, सारे धर्म ग्रंथ, कई जीवन कहानियां, उसमें जो हमारी बातें लिखी जाएंगी, जो दृष्टांत होंगे, तो जो दृष्टांत लिखे जाएंगे वो दृष्टांत ही फिर भक्ति मार्ग में अनेकों के जीवन कल्याण का आधार बन जाएंगे। तो इसमें ये पांच बातों पर जिधर जितना हमारा वो रहेगा तो साक्षी होना एकदम सहज हो जाएगा। पांच बातें कौन सी, फिर से रिपीट करें। एक है दृष्टि, दूसरा दृष्टा, तीसरा दृश्य, चौथा दृष्टिकोण और पांचवा दृष्टांत। तो ये पांचों बातों पर हमारा सदैव ये चिंतन चले कि मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूँ और मेरे दृष्टांत लिखे जा रहे हैं और वो दृष्टांत का आधार मेरा दृष्टिकोण है। तो जितना एक तो ये बात जो बाबा ने आज साक्षी दृष्टा में बताई और ये विनाश के समय भी बहुत बहुत काम देगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो कर्मातीत बन गए, हमें अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस पर हम अभी कुछ मनन चिंतन करेंगे आपस में, और वो केवल सुने ही नहीं अपने से लगाकर देखते जाएं कि मेरे और उस स्थिति में कितना अंतर है और वो अंतर को समाप्त करके मुझे अंत तक उस कर्मातीत और स्थिति को प्राप्त करना है जैसा ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। तो एक तो हम ये साक्षी दृष्टा होने का लक्ष्य एक ये रखते हैं। दूसरी बात ये जैसी आज इसमें भी बाबा ने दो बात बताई थी, एग्जाम में पास होना है, तो कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हमारा लक्ष्य यही रहे कि मैं इसमें कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प पहले भी विजयी बनी थी, अभी भी विजय बन रही हूं और कल्प कल्प विजयी बनती रहूंगी। ऐसा ना हो जरा भी संशय, कोई बात होती है क्या होगा कैसे होगा, अब नहीं, मैं विजयी आत्मा हूं। बस जैसे ही हमारे ये संकल्प आएंगे वो परिस्थितियां बदलती जाएंगी, हमारा ऑरा बदलता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा और वो परिस्थितियों को नीचे कर देगा और हमारी स्वस्थिति ऊपर होती जाएगी। तो कल्प इसमें एक ये बात की स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय, ये हमारा सदा लक्ष्य रखे। ब्रह्मा बाबा को देखा, कौन सी ब्रह्मा बाबा के सामने बीच बीच में परिस्थिति आती थी, कौन सी, सबने सुना तो है ये, भले देखा हो ना हो, खांसी रूपी परिस्थिति। जब बाबा की टेप भी सुनते हैं, बहुत अच्छी टेप होती है, मुरली चलती है, लेकिन बीच बीच में कई बार बाबा को खांसी भी आ जाती थी। तो ये खांसी रूपी परिस्थिति जब आती थी तो कई बार तो बाबा, हमें लगता था बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, कैसे हो रहा होगा, क्योंकि आंख भी गीली जैसी हो जाते थे, लेकिन बाबा बस थोड़ा सा ये परिस्थिति आई, फिर बाबा कहते थे, हिस्ट्री हॉल ही था तब तो ये हॉल था नहीं, और अगर पूरे दिन भर में कभी आए तो वो तो व्यक्तिगत जैसे हो जाता है, बाबा कमरे में है या कुछ, लेकिन जब क्लास में सबके सामने है और वो खांसी अगर ऐसे आती थी तो बाबा कैसे स्वस्थिति पर परिस्थिति, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता था। बाबा के पास ही एक लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का ट्रांसलाइट जैसा रहता था, वहां आपने देखा होगा, अभी तो दो ही हैं, पहले जब बाबा मामा थे तो तीन संदलियां रहती थी, सबसे किनारे जिधर घुसते हैं इधर से, तो वहां बाबा बैठते थे, उधर मामा बैठती थी, बीच की संदली खाली रहती थी। और जब भी कोई बच्चे आते थे, पार्टी आते थे, जब आते थे वन बाय वन, उसमें सुनाया करते थे कि किस लक्ष्य से आए हैं और यहाँ क्या तपस्या करेंगे, और जाने से भी एक दिन पहले वो अनुभव सुनाया करते थे, और गुरुवार के दिन तो संदेशी भोग वगैरह लगाती थी, तो वो बीच वाली संदली यूजुअली खाली रहती थी। तो जब खांसी आती थी कई बार बाबा को, तो बस बाबा कहते थे, देखो बच्चे अभी तो पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, पुराने तत्वों से बना हुआ ये है, वो कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, वो ट्रांसलाइट की तरफ बाबा देख के कहते थे, और बस नए पूरा सतो प्रधान तत्व होंगे, दुनिया ऐसी होगी, नया शरीर होगा, वहां कोई भी ऐसी कष्ट वाली कोई चीज नहीं होगी, खांसी और कुछ। और ऐसा कहते कहते ही बाबा का चेहरा भी एकदम रंग रूप जैसे बदल जाता था और बाबा उस खुशी में लहराते थे। और बाबा कहते थे, बच्चे देखो बस उसी स्थिति में रहो, अभी ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, बाबा को भी नशा होता है, देखो कल बाबा जाके ऐसा मिचनू बनेगा, अभी तो ये पुराना शरीर है, पुराने तत्व तो हैं। ऐसा कह के बस खांसी कहाँ गई और बस इस स्वस्थिति के द्वारा बाबा ऐसा अपने को बना लेता था कि बस किधर गई खांसी पता ही नहीं चलता था, फिर बाबा मुरली चलाया करता था। तो एक ये शिक्षा हमें भी लेनी, हम सबके सामने भी बहुत परिस्थितियां आएंगी जीवन में, कोई संबंधियों की, कभी शरीर की, कभी कोई अलग, मतलब तन मन धन समय शक्ति किसी हर प्रकार की आती भी है, सबको अनुभव है। लेकिन बस हम इस समय की उस आने वाले समय से तुलना करते हुए ऐसे स्वस्थिति को शक्तिशाली बना लें कि परिस्थिति की जैसे विस्मृति हो जाए। तो एक तो ये हमारे रहे लक्ष्य सदा कि स्वस्थिति द्वारा कैसे परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। और क्या देखा, जब हमें वैसे तो बाबा से बहुत बार मिले थे 62 से 68 69 के बीच में, लेकिन कई बार आते थे, बाबा को पूछते थे, कोई बात पूछते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान देते थे। लेकिन 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पर आ गए। आप सब लोग जहां तक मुझे मालूम है बनारस सब जोन से आए हैं, वहीं से ही आए हैं ना, तो बनारस से तो हमारा बहुत पुराना काफी परिचय रहा है 62 से, क्योंकि हमने अपनी इंजीनियरिंग धनबाद से पास की और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, और तब साकार बाबा थे और बाबा के पास जब हम गए, हमारी दिल नहीं थी उधर जाने की, क्योंकि तब लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और शुरू से ये रहा है कि अभी बहुत समय कम है और बहुत कमाई करनी है, अनेक जन्मों के विकर्म भस्म करने हैं। तो इसीलिए जब वहां पर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ तो हमारी दिल नहीं थी, लेकिन हमारे लौकिक पिताजी और सब ने बोला नहीं, पढ़ना तो है ही है, पढ़ाई तो करनी है। तो हमने कहा चलो, पिताजी ने कहा बाबा के पास चलते हैं, साकार में बाबा होते थे, कोई बात होती थी बाबा के पास सब आ जाया करते थे, पूछते थे बाबा समाधान देते थे। बाबा के पास आए तो बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, पढ़ना तो है ही, हमसे पहले भी दो और विद्यार्थी आए हुए थे और यहाँ पर बाबा से जो बाबा के ज्ञान में थे, और बाबा ने उन्हें तो डायरेक्शन दी थी कि हाँ बच्चे पढ़ाई पूरी हो गई है तो बस अब सेवा में लग जाओ। और इस तरीके से जब हमारा टर्न आया तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें तो पढ़ना है। तो हमने कहा कि बाबा ऐसा ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि आपने उनको बोला हमसे पहले ही जो दुआए कि बस ठीक है पढ़ाई जितनी कर ली अब सेवा में लग जाओ। तो बाबा ने कहा देखो, हरेक के लिए श्रीमत अपनी अपनी है, अलग अलग है, किसमें किसका कल्याण है बाबा ये जानता है। तो बाबा को तो तुम्हारे द्वारा बहुत सेवा देश विदेश की करानी है, बहुत बड़े बड़े लोगों की भी सेवा वीआईपीस की होनी है, तो इसीलिए तुम्हें पढ़ाई ये करनी है और पढ़ाई के साथ साथ इस डबल स्टूडेंट बनो, वो पढ़ाई भी और ये पढ़ाई भी, इस तरह बाबा ने कहा। तो बाद में उसका रहस्य देखो समय पर खुलता जाता है। एक भाई को जिसको बाबा ने कहा कि भाई ठीक है तुम्हारा पढ़ाई जितना हो गया पूरा कर लो, अभी सेवा में लग जाओ, तो वो तो सेवा में लग गया। लेकिन कुछ साल बाद ही ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट में उसने शरीर छोड़ दिया और जैसे अकाली मृत्यु हो गई। तो देखा कि अगर वो भी पढ़ाई पढ़ता रहता, इतनी देर में तो पास भी नहीं कर पाता, इंजीनियरिंग का ही वो स्टूडेंट था, उसको छुड़वा के बाबा ने उसको इतनी अनेक जन्मों की कमाई करवा दी। तो बाबा कैसे जानी जाननहार, भले बाबा ब्रह्मा बाबा कहता था मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, शिव बाबा जानी जाननहार है बाबा कुछ नहीं, लेकिन उस संघ के रंग में शिव बाबा का वो रथ था, तो उस संघ के रंग में वो भी जैसे जानी जाननहार जैसा हो गया था। तो एक तो वो देखा इस तरीके से। तो फिर धनबाद में हम पढ़ने गए और वो तो पूरी बहुत लंबी हिस्ट्री, और मुझे ये सौभाग्य मिला है वहां पर सुरेंद्र दीदी जी, हाँ अभी शायद यहाँ नहीं आई है, हाँ चले गए, हाँ तो सुरेंद्र दीदी जी उन्होंने ही, उनके द्वारा ही वो सेंटर की स्थापना हुई, गुप्ता जी और सुरेंद्र बहन जी। और तभी धनबाद में वहां पर जब हम गए तब वहां सेंटर नहीं था ये, लेकिन बाबा के पत्र हर हफ्ते आ जाया करते थे, बच्चे वहां पर सेंटर खोलो, सेंटर खोलना है। और इस तरह शुरू से ही बाबा ने इतना बल भरा, और तो उनके सहयोग से, सुरेंद्र बहन गुप्ता जी के सहयोग से, और पास में एक सिंदरी होता था वहां पर, एक युगल थे सुषमा बहन जी और अविनाश भाई, उन सब के सहयोग से वो सेंटर खुल गया और बाबा ने कैसे वहां पर पालना की। तो स्टूडेंट लाइफ से ही, फर्स्ट ईयर के बाद से ही बाबा ने वो सेवा का जैसे बीज बो दिया वहां पर। तो मैं बता रहा था जैसे अक्सर करके पहले जब मिला करते थे तो बाबा से पूछा करते थे, लेकिन जब हम 17 जनवरी और 18 जनवरी को यहाँ बाबा से मिले तो बाबा ने के पास जाते थे, बाबा ऐसे दृष्टि दी बाबा ने, और बस एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा ने कहा कि बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये कर्मातीत अवस्था का ये भी एक लक्षण है, जैसे साक्षी दृष्टा बिल्कुल हो जाएंगे, कोई भी स्थिति हो वो प्रभाव नहीं डालेगी। और जो आत्मा को कहते हैं भक्ति मार्ग में, आत्मा निर्लेप है, कोई लेप छेप नहीं लगता। तो जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, वास्तव में वो तुम बच्चों की स्थिति का लक्षण है अंतिम समय का। आत्मा पर तो सारे लेप छेप लगता ही है, जैसे हम सब जानते हैं आत्मा ही कर्म करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा ये सब आत्मा ही कहलाती है। लेकिन जो हमारी अंतिम कर्मातीत अवस्था का लक्षण है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में वो लिखा है आत्मा निर्लेप है, यानी कि कुछ भी होगा, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ, कोई भी परिस्थिति होगी हम आत्मा उनसे निर्लेप हो जाएंगे। हर परिस्थिति में हमारा आत्मिक स्थिति ऐसी स्टेबल होगी, तो वो ही भक्ति मार्ग में निर्लेप का लिखा है, जो कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में इस बात के ऊपर काफी स्पष्टीकरण किया गया था। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति कब आएगी, ये ब्रह्मा बाबा का हमने अंतिम दो दिनों में देखा, 17 और 18 जनवरी को। उससे पहले हम बता दें कि ये धनबाद से इंजीनियरिंग पास करके 67 में वहां से पास कर लिया, और फिर ONGC नाम की एक संस्था है जो तेल निकालती है जमीन से, पेट्रोल वो उसको ज्वाइन किया। वो भी एक इतिहास है, बाबा ने ही कैसे उसमें ज्वाइन करवाया, और तीन जगह और था अपॉइंटमेंट, लेकिन बाबा तो जानी जाननहार है और हमारी इच्छा नहीं थी कि हम उसे ज्वाइन करें, क्योंकि आसाम में पोस्टिंग हुई थी और वहां तो कोई सेंटर नहीं था। तो फिर बाबा के पास यहाँ पर आके पूछा तो बाबा ने कहा 67 में कि नहीं बच्चे तुम्हें ये ज्वाइन करना है, क्यों, क्योंकि तुम्हें ऐसी जगह जाना है, बाबा ऐसी ऐसी जगह भेजेगा जहां कोई बच्चे नहीं होंगे, सेंटर नहीं होगा, और तुम्हें वहां जाकर के ये बाबा का पैगाम देना है। तो ड्रामा अनुसार पार्ट भी ऐसा ही रहा, जहां जहां पोस्टिंग होती रही जाना, धनबाद से ही वैसे ही शुरू हुआ, बाबा वहां पर सेवा कराता रहा और सेंटर खुलवाता रहा। तो इस तरह आसाम में भी गए, वहां पर कोई भी सेवन जो सिटीज बोला जाता है वहां पर कहीं पर भी कोई सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला भी नहीं थी, कोई बाबा का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन करण करावनहार तो बाबा ही है, तो बाबा वहां पर इनकी स्थापना कराता रहा और इस तरह ये चलता रहा। तो 17 जनवरी को जब हम यहाँ आ गए, वो भी जैसे बाबा ने किस तरह बुला लिया, तो यहाँ आके हमने देखा कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देके कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी मन के भाव को पढ़ लेना, मन में क्या चल रहा है। तो पहले जब भी जाते थे हम लोग बताया करते थे, बाबा तब समाधान देते थे, लेकिन उन अंतिम दो दिनों में देखा एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये है जैसे स्थिति जो है, मन जीते जगत जीत की स्थिति। मन में, और इसे कौन बना सकता है, हम सबको भी ऐसा ही बनना है। हमारे सामने अनेक अनेक भक्त आत्माएं आएंगी। कुछ दिनों से बाबा की मुरली नारद मीरा और उनके ऊपर चल रही है। आज भी बाबा ने कहा ना, भक्तों को बाबा साक्षात्कार कैसे कराता है, वो हम बच्चों के द्वारा ही बाबा को कराना है। अंत में यही स्थिति होगी, जो हमने बाबा की स्थिति अपने आंखों से देखी, अंत में हम सबकी वही स्थिति होनी है। लोग हमारे सम्मुख आएंगे, बहुत भक्त आत्मा आएंगी, अनेक इच्छाएं लेकर के आएंगी, साक्षात्कार की इच्छा, शांति की, शक्ति की, बहुत शक्तिहीन आत्माएं आएंगी, लेकिन हम उनके मन के भावों को पढ़ के और तब उनका समाधान कर सके, ये स्थिति का अनुभव बाबा ने उन दो दिनों में 6-7 बार कराया। जब जब बाबा के सम्मुख जाते थे, बस अलग अलग प्रश्न लेकर के जाते थे, लेकिन बाबा एग्जैक्टली मन में क्या चल रहा है बता के उसका समाधान देते थे। तो एक तो हमें ये स्थिति बनानी है कि मन को बिल्कुल ऐसी स्थिति में तब कर सकेंगे हम, दूसरे के मन के भावों को तब पढ़ सकेंगे, कब, जब हमारे अपने मन के अंदर कोई संकल्प नहीं होगा, हमने अपने संकल्पों को जीता हुआ होगा, शक्तिशाली बनाया हुआ होगा। जब हमारे अगर हमारे मन में ही कोई संकल्प चलते होंगे और कोई व्यक्ति आया, उसके संकल्प को हम रीड करेंगे, तो उसमें हमारे अपने संकल्प उस व्यक्ति के प्रति क्या है वो मिक्स हो जाएंगे और हम सही बात जान नहीं सकेंगे और उस व्यक्ति के मन की इच्छा को पूर्ण कर नहीं सकेंगे। तो एक ये आवश्यक बात और है कि मन के को हम इच्छा मात्रम अविद्या बना लें। कोई हमारे मन में कोई इच्छा ना, अच्छी भी इच्छा, कोई बुरी संसारिक इच्छा की बात नहीं है, अपनी भी कोई इच्छा, भाई मेरा और योग लग जाए, किसी इस आत्मा का उद्धार हो जाए, हम लोग होता है हमारे संबंधियों का, मित्र, उन सब का चाहते हैं उद्धार करना, वो भी सब इच्छाओं से भी परे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या अगर हम हो जाएंगे तो हम दूसरे के मन की इच्छाओं को पढ़ सकेंगे और उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकेंगे। तो एक ये बात होती है। बाबा को भी इस स्थिति तक आने में काफी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा नहीं है। शुरू में भी हम सब लोगों ने देखा है, हमें याद है हमारे यहाँ डॉक्टर आनंद किशोर दादा हुआ करते थे। एक बार उन्होंने हम लोगों को, सीनियर भाई बहनों को, काफी समय पहले की बात है, 30-40 साल पहले, बाबा के हाथ का लिखा हुआ एक एक पत्र की कॉपी दी। तो वो क्या था, बाबा ने 1936-37 में जब बाबा आए, तो उन्होंने बाबा की डायरी में से ये पत्र निकला था। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा था। तो मन को पत्र कैसे लिखा, क्योंकि बाबा ने भी अनुभव किया जब ज्ञान में आए कि योग लगाने बैठते हैं मन भाग जाता है, कभी बच्चों की तरफ, कभी पत्नी की तरफ, कभी बिजनेस की तरफ, कभी जहां जहां मन को भागने की जगह होती है वहां मन भाग जाता है, स्वाभाविक है। तो बाबा ने पत्र लिखा मन को। क्या लिखा बाबा ने मन को पत्र, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री ने मुझ राजा को इतना शक्तिहीन बना दिया, कमजोर बना दिया कि, और तू शक्तिशाली हो गया, तू जिधर जिधर जाता रहा मैं आत्मा राजा भी राजा होकर भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तुझे फॉलो करता रहा, तू शक्तिशाली हो गया मंत्री और मैं राजा कमजोर हो गया। फिर दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा था कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूं कि मैं आत्मा अब फिर से अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं और होता जा रहा हूं, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। तो बाबा ने अपने स्वमान में स्थित होकर और तब ये पत्र लिखा, और ऐसा ही पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन का साथ देती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर बना दिया, मैं तुम दोनों के कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे ही भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। तो स्वमान में स्थित, तो ये दूसरी बात जो हम सबको नोट करनी है कि हम सब भी चाहते तो हैं कि फलानी शक्ति मेरा ऑर्डर माने, कभी मन बहुत इधर उधर भाग रहा है तो समाने की शक्ति आए, चाहते हैं एक सेकंड के लिए आते हैं महसूस करते हैं, फिर बुद्धि उसी पुरानी परिस्थिति में चली जाती है, फिर मन बहुत इधर उधर की सोचता है, फिर मन को पकड़ के लाते हैं, थोड़ी देर तक मन बात कर मानता है, फिर मन भाग जाता है, हम सबका ये अनुभव है। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, बाबा ने ये सिखाया, पहले अपने स्वमान की सीट में स्थित रहो। कोई पॉलिटिशियन होता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बड़ा होता है, कलेक्टर होता है, कमिश्नर, तो जब तक वो अपनी सीट पर है तब तक उसका ऑर्डर सब मानेंगे, लेकिन वो अपनी सीट पर नहीं है, उसका ट्रांसफर हो गया या पॉलिटिशियन है, वो इलेक्शन हार गया, चला गया, सीट पर नहीं है, फिर वो जितना भी ऑर्डर करेगा उसकी बात कोई नहीं मानेगा क्योंकि वो सीट पर नहीं है। ऐसे ही मुझे भी पहले अपने मैं स्वमान की सीट पर स्थित हूं जो बाबा बताता है, और इसीलिए ही ये अभ्यास कराया जाता है कि अपने स्वमान को या तो कई बार हम लिखें, कई बार उसको स्मृति में लाएं, और धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाएगा, बस वही सुमान, मैं वही कलप पहले वाली विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये परिस्थिति पर मैंने अनेक बार विजय प्राप्त की है, अभी भी विजय प्राप्त कर रही हूँ, मैं वही कलप पहले वाली आत्मा हूँ, जो बाबा ने आज भी कहा ना, बाबा आप भी वही कलप पहले वाले हो, मैं भी वही कलप पहले वाली आत्मा हूँ, तो उसको स्थिति में लाए। तो एक ये, इससे क्या होगा, स्वस्थिति हमारी शक्तिशाली होती जाएगी, परिस्थिति कम होती जाएगी, और स्वस्थिति ऊपर हो जाएगी, परिस्थिति नीचे हो जाएगी, और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो परिस्थिति हमारी स्थिति पर कोई भी प्रभाव छोड़ करके नहीं जा सकती। तो एक बाबा का ये अंतिम दो दिन में एक ये देखा कि बस ये, और हमारा भी लक्ष्य ये रहे, मुझे भी इच्छा मात्रम अविद्या होते चले जाना है, जिससे कि मैं अपनी स्वस्थिति को इतनी शक्तिशाली बना लूं, किसी के भी मन की बात को पढ़ करके उसका समाधान दे सकूं, जैसा कि बाबा का को हमने देखा। एक ये बात है, और क्या बात हमने देखी है, और इसी संदर्भ में मैं ये बता दूं, 18 जनवरी को रात्रि क्लास हो रही थी, 18 जनवरी की रात्रि की बात, बाबा के शरीर छोड़ने से कुछ एक घंटा पहले की ही बात है, बाबा रात्रि क्लास करा रहे थे, मैं भी सामने बैठा हुआ था, जैसे सब दादी जी भी बैठे हुए थे एक तरफ, और बहुत कम ही लोग थे, 15-20 लोग होंगे, तब तो मधुबन में पार्टियां भी नहीं थी, ठंडी के दिन थे, तो सुनते सुनते हमारे मन में एकदम बस एक विचार आया कि भाई क्या ही अच्छा हो, बस बाबा कुछ मेरे लिए बोले, कुछ बात हमारे लिए जिसमें कि हमारी और उन्नति हो। तो बस देखो मन में संकल्प आया और बाबा तो कर्मातीत स्थिति में थे, बिल्कुल मन एकदम ऐसा क्लीन मिरर जैसे होता है ना, तो बस जैसे ही संकल्प आया बाबा ने कैच किया होगा और तुरंत ही बाबा ने मुरली में नाम लेकर के कुछ तीन चार पांच महावाक्य कुछ उच्चार दिए। तो ये वही भक्ति मार्ग में लिखा गया है कि भक्त के मन में इच्छा हुई और भगवान बस उस इच्छा को पूर्ण कर देते थे। भक्त ने कहा, वहां तो कहने की बात है, यहाँ तो संकल्प की बात हुई, और भक्त भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस तथास्तु, कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं। तो और उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते थे, चले जाते थे, भक्त की आंखों से ओझल हो जाते थे। तो उस दिन भी ये मन में बात हुई, संकल्प आया, बाबा ने संकल्प को पूरा किया, मुरली चलाई और बस मुरली चला के बाबा उठे और दरवाजे तक आकर के बाबा ने कहा, क्या अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, बाबा हमेशा कहते थे अच्छा बच्चों को गुड नाइट कहके चले जाते थे अगर रात्रि क्लास होती थी। लेकिन पहली बार ही बाबा ने वो टेप में, अभी तक भी वो टेप मिलती है ओम शांति भवन के नीचे जो वो है ऑडियो विजुअल, वहां पर वो पेन ड्राइव या सीडी वगैरह मिलती है 18 जनवरी की रात्रि क्लास की, वो आप जरूर सुनो। और उसमें बाबा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। और दूसरी बात उसमें क्या देखी कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो शरीर के कर्म भोग जो हैं वो सब बस धीरे 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 शांत हो जाते हैं और योग बल जो है कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये देखा बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, खांसी आती थी, ठंडी के पीक ठंडी के दिन थे 18 जनवरी। और लेकिन उस दिन जब बाबा रात्रि क्लास कराने आए, बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, उसमें एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि हम भी जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो इस शरीर के जो भी कर्म भोग होंगे उनके ऊपर हमारा योग बल धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेगा। और वही बात को जब पूछा गया बाबा को कि बाबा दो तीन दिन के बाद जब 13 दिन का भोग लग रहा था, तो एक बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी अंतिम स्टेज कैसी थी, आप उसका वर्णन करो बताओ, क्योंकि हम सभी बच्चों को उस स्टेज से गुजरना है जब शरीर छोड़ना है। उससे पहले कर्मातीत अवस्था, बाबा ने कई बार मुरली में बोला है, जब कर्मातीत अवस्था होगी तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही शरीर छोड़ देंगे, उस कर्मातीत अवस्था का आप बच्चे कुछ समय कुछ घंटे कुछ वो अनुभव करेंगे कर्मातीत अवस्था क्या होती है। तो बाबा ने बताया कि बच्ची अंतिम समय में ये था, क्योंकि बाबा यहाँ से मुरली चला के गए और अपने कमरे में गए, कमरे में दादी जी भी साथ थे, तो दादी जी के हाथ में हाथ और बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपनी सारी शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी ली। तो बाबा से बच्चों ने बाद में जब पूछा तो बाबा ने कहा, बच्ची अंत समय कर्म भोग और योग बल की बहुत बहुत गहरी युद्ध चल रही थी, तो कभी कर्म भोग भारी हो जाता था कभी योग बल। तो शुरू में कर्म भोग बहुत भारी था, यानी कि बहुत हार्ट में पेन था और कर्म भोग बहुत तकलीफ दे रहा था, और लेकिन जो जीवन भर की योग बल की कमाई थी वो भी, लेकिन कर्म भोग ज्यादा भारी था, वो बहुत अपनी तरफ खींच रहा था, बार बार देह की तरफ खींच रहा था। और जो योग बल की कमाई थी वो बाबा संकल्प ला रहे थे, मैं विदेही हूँ, अशरीरी हूँ, निराकारी हूँ, इस आत्मा इस शरीर से न्यारी है। लेकिन दर्द इतना ज्यादा था, तकलीफ इतनी ज्यादा थी, वो खींच रही थी। लेकिन बाबा का ध्यान पूरा योग बल की तरफ था, तो धीरे 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 ये कर्म भोग हल्का होता चला गया और जो योग बल गहरा होता चला गया और योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल करके चली आई। तो अंत में देखो ये भी बिल्कुल लास्ट चांस लेगा, जितना भी शरीर के भोग हैं, जो क्योंकि इतना 63 जन्मों में क्या जो आत्मा तो पतित ही बनती चली गई, विकारी बनती चली गई, तो अंत समय अभी हम सब लोग उसको योग बल के द्वारा हल्का तो कर रहे हैं विकर्मों को, लेकिन जो रह जाएंगे वो अंत समय में अपना पूरा फोर्स से आएंगे और उनके अंदर और जो हमने योग की कमाई की होगी उनके अंदर अंत में जैसे युद्ध चलेगी। और अगर हमारा कर्म भोग ही ज्यादा भारी हुआ और दर्द के वशीभूत हो गए या कोई भी जो भी तकलीफ जो आत्मा शरीर छोड़ने में विघ्न आ रहा है वो ऐसी स्थिति हुई तो क्या होगा, अंत मते सो गति का गायन है, अगर अंत में कर्म भोग के वशीभूत हो गए तो फिर वैसा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में मुझे मम्मा की एक बात याद आ रही है, जब मम्मा ने यहाँ शरीर छोड़ा तो सब जगह वो गया था समाचार, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और मम्मा तब तो बाबा साकार में थे यहाँ पर, मम्मा ऊपर गई तो ऊपर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के थ्रू वहां पर बाबा ने पूछा जैसे कि मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो, तो मम्मा तो जैसे हमेशा शांत रहते थे, मम्मा ने कुछ नहीं बोला और शांत थे, तो लेकिन निगाहों से जैसे बता दिया कि नहीं बाबा, और मम्मा ने बोला कि कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसका तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची अभी तुम्हारा शरीर रखा है वहां पर, अभी जाओ उस शरीर में प्रवेश करके और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा को बाबा ने वापस सूक्ष्म वतन से यहाँ भेजा। थोड़े समय के बाद मामा फिर यहाँ आके फिर वापस जब गई तो बाबा ने पूछा हाँ बच्ची अनुभव करके आई कि क्या कर्मातीत अवस्था होती है, तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, क्योंकि जब मैं गई तो शरीर तो ठंडा हो चुका था, शरीर में कोई भी चुरपुर नहीं हुई और उसके द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कर्मातीत स्थिति का मतलब है बिल्कुल भाई इन नैनों के द्वारा देखते हुए भी न देखना, ऐसी कानों द्वारा भी ऐसी न्यारी स्थिति हो जाए जो कोई भी बाहर के कर्म जो हैं वो आत्मा पर अपना प्रभाव न डाल सके, सब कर्मों से अतीत, वो है कर्मातीत स्थिति। अब चूंकि शरीर ठंडा हो चुका था इसलिए न कोई आंख खुल सकी, न कोई कान एक्टिवेट हो सके कोई भी, क्योंकि आत्मा ही जब नहीं है तो शरीर की सब कर्मेंद्रियां तो शिथिल पड़ जाती हैं। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची अब कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए अब जैसे फिर से तुम्हें जाके जन्म लेना पड़ेगा, नए जन्म में और नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो तो हम सब जानते हैं, अभी तक भी बाबा ने ये पार्ट नहीं खोला है कहाँ है मामा, क्या पुरुषार्थ है, लेकिन ये जरूर है कि मामा यहीं पर ही कोई ना कोई बहुत ऐसा पुरुषार्थ में कहीं भी तल्लीन आत्मा है, क्योंकि लक्ष्मी तो का तो वो सीट फिक्स ही है, मामा को बनना है जो बाबा ने लक्ष्मी नारायण नंबर 1 आत्मा कपल जो बोला है तो वो तो यही है बाबा मामा का। तो इनसे हमें यही कि मुझे इस शरीर में रहते हुए भी ना कोई भी परिस्थिति हो मुझे कभी भी शरीर से तंग नहीं होना है, जितना भी कष्ट हो हिसाब किताब चुकतू हो रहा हो, कई बार होता है ना इससे तो ये शरीर छूट जाए, नया शरीर है यहाँ हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं शरीर में होना ही बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि शांति में भी पड़े रहें उसमें भी योग बल चलता रहेगा, एक ये बात सदा बुद्धि में रहे कि हर हालत में मुझे ये करना है। और क्या करना है, क्योंकि अंत समय अंत मते सो गति का गायन है ना, अंत में हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, जहां पर हमारा कोई लगाव हो, झुकाव हो, कोई घृणा, किसी से बहुत घृणा, वो याद आ जाएगा, कोई रहा हुआ काम होगा, ये करना चाहते हैं लेकिन करने से पहले आत्मा चली गई तो उधर जाएगा, अरे ये तो रह गया, ये तो मुझे करके जाना था, आदि आदि। तो इसीलिए अभी से ही हम उस कर्मातीत अवस्था की तैयारी शुरू कर दें। कोई भी पेंडिंग काम रहा हुआ हो जो हम सोचते हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल वाली ये होता है ना, कल कल करते समय बीत जाता है, मानो विल ही करनी है तो भाई कर लेंगे, विल लिख देंगे, लेकिन ये बात को हम टालते जाते हैं। और अगर बीच में शरीर छूट गया तो क्या होगा, ऐसे यहाँ कई अक्सर करके होता है, कई बार जो भाई बी के भाई बहने जो शरीर छोड़ के चले गए, जब उनका भोग लगाने के लिए यहाँ पर उनका परिवार वगैरह आता है तो वो आत्माएं बहुत ऐसा दुख में गम में बी के होते हुए भी ऐसा अनुभव करते हैं, बाबा देखो मैं ये टालता रहा और मेरा शरीर छूट गया, ये काम रह गया, अब तो इतना धन इतना प्रॉपर्टी, ये बच्चे तो ज्ञान में नहीं है तो ये क्या होगा, बाबा ने अब तो मेरा भाग्य बनेगा, तो बहुत बहुत दुख का अनुभव करते हैं। तो एक तो कोई पेंडिंग काम न रहे ये, और वो बाबा का भी हमने देखा 18 जनवरी को ना, बाबा ने सुबह के वक्त मुरली नहीं चलाई, सिर्फ योग कराया। उसके बाद बाबा ने यीशु दादी को बोला, बच्ची आज जितना भी पत्र का उत्तर देना बाकी रहा वो लिखवा लो। तो यीशु दादी ने सारे उत्तर लिखवा लिए, नहीं तो बाबा वो, अगर बाबा बिना उत्तर दिए हुए ही चले जाते, नॉर्मल केस में बाबा सप्ताह में 2-3 दिन पत्रों के उत्तर देते थे, तो उस दिन वो दिन ड्यू नहीं था, लेकिन बाबा ने वो सारे पत्र लिखा दिए, जिससे किसी बच्चे का ये संकल्प न चले मैंने बाबा को पत्र लिखा और उत्तर तो आया नहीं। तो पहले तो ये ईमेल और इंटरनेट ये सब होते नहीं थे, तो सारे पत्र बाबा ने लिखवा दिया। और नक्की लेक पर जो म्यूजियम है, वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, वहां प्रदर्शनी करी थी, तो ले न लिए, तब यज्ञ पे इतने साधन भी नहीं थे, धन भी नहीं था, लेकिन बाबा ने लास्ट डे में ही वो फाइल क्लियर करी, उसको ले लिया जाए और वो पूरा का पूरा सेवा का स्थान बनाया जाए। तो देखो वो पेंडिंग काम भी, ज्यादातर तो पहले पेंडिंग काम बाबा पूरा कर चुके थे, लेकिन ये 3-4 पेंडिंग काम बचे हुए थे उस दिन बाबा ने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि रोज रात को मुरली क्लास, यहाँ पर आपने देखा होगा लगभग 8:45-9 बजे होती है रात्रि क्लास, बाबा के टाइम भी ऐसे ही होती थी, लेकिन उस दिन बाबा ने 6:30 बजे ही बस जमुना प्रसाद भाई को बुला के बोला कि भाई बाबा आज क्लास जल्दी कराएगा और जो भी बच्चे हैं सबको कह दो सब भोजन करके 7 बजे तक क्लास में आ जाए, भोजन करके, ये विशेष बाबा ने कहा। तो क्यों, क्योंकि आप सबको मालूम है अगर बाबा नॉर्मल केस में क्लास कराते तो क्लास हो ही नहीं सकती थी, तो बाबा ने क्लास 2 घंटा प्रीपोन कर ली, 7 बजे आज बाबा क्लास कराएगा। तो बाबा आए और बाबा ने फिर क्लास कराई, और बस उस क्लास के बाद जैसा मैंने बताया कि फिर बाबा गए और अपने कमरे में जाके बाबा ने देह त्याग किया। तो ऐसे ये इन सब बातों से यही है कि हमारा भी कोई पेंडिंग काम भी ना रहे, बचा हुआ काम घर गृहस्थी का भी कोई है, अगर मानो सास को बहुओं को कोई और चाबी देनी है, कोई बात बतानी है, होता है ना घर की कई सारी बातें होती हैं, तो पेंडिंग ना रखें, क्योंकि अंत समय ये बात तो छोटी सी है, छोड़ के तो यही जाना है, अपने साथ तो ले नहीं जाना है चाबी का गुच्छा, लेकिन वो संस्कार अगर चला गया तो वो हमें फिर इन परिस्थितियों में पुनर्जन्म दे करके हमारे द्वारा वो पेंडिंग काम पूरा कराए। तो देखो एक छोटे से बात के लिए हम जन्म जन्मांतर का भाग्य गवा दें ऐसा नहीं, इसलिए एक हमें ये बात जरूर करनी है। और सबसे बड़ी बात अंत में मैं बताना चाहूंगा कि बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा का शरीर रखा रहा 65 घंटे तक, क्योंकि दीदी जी टूर पर थे। 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा, रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार यहाँ किया गया। शांति स्तंभ की जो जगह है यहाँ पर बाबा का संस्कार, तो लगभग इतना 65 घंटे तक शरीर रखा रहा, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई काला नहीं पड़ा, कोई शरीर में दुर्गंध नहीं आई किसी प्रकार की। और हम लोगों ने जब जो भी वरिष्ठ भाई लोग थे, तब तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन मदद किया वरिष्ठ भाइयों को, और तो जो स्नान आदि, तो बाबा के शरीर में काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो जब आत्मा चली जाती है तो शरीर जैसे बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। तो ये प्रतीक है प्रकृति जीत का प्रतीक, कि पांच तत्वों के बने हुए शरीर पर भी, पांच तत्वों के पर भी बाबा ने कैसे विजय प्राप्त कर ली थी। तो नहीं तो ज्यादातर शरीर को भी हमने देखा, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया बाबा को, ना कोई केमिकल लोशन लगाया गया जिससे शरीर वैसा ही बना रहे, कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, गोरा रंग और एकदम सॉफ्ट, और कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई। तो ये प्रकृति जीत का प्रतीक है, इसीलिए मन जीते जगत जीत जब बोलते हैं तो जगत के अंदर तो प्रकृति भी आ गई। यहां मैं छोटे छोटे एक दो बात बोलना चाहूंगा जस्ट बाबा के। हाँ, बाबा भी प्रकृति जीत था यहाँ, और यहाँ पर देखा एक बार। हाँ, अक्सर करके क्या होता था, भोग के दिन, हाँ, जब संदेशी आती थी, बस भोग रखा जाता था, बाबा संदेशी को बोलता था, हाँ बच्ची बस गो सुन कम सुन, बाबा जरा सा यूं दृष्टि दी और कुछ सेकंड में ही संदेशी जैसे उड़ जाती थी, फिर संदेश लाती थी, संदेश सुनाती थी। उसके बाद क्या होता था, हाँ, कैसे बाबा प्रकृति जीत, बस बाबा डब्बी खोली, थोड़ा भोग हाथ में रखा यहाँ पर हथेली पर, और बाबा कहता था, हाँ आओ बच्ची आओ बच्ची, ऐसे बाबा देखता था तो कहीं से वो चिड़िया, हाँ छोटी सी बुलबुल सी होती थी चिड़िया, वो फुदकती हुई चू चू करती हुई आ जाती थी मेज पर बैठी, फिर मेज से बाबा के हाथ पर आती थी और फिर वो खाती थी भोग, और उसके बाद थोड़ी देर तक वो यहाँ पर बैठते थे और फिर चली जाती थी। तो बाबा के जैसे, बस ये एक प्रैक्टिकल में भक्ति मार्ग में तो जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा का एक तो ये प्रैक्टिकल देखा, प्रकृति जीत, पशु पक्षी जीव जंतु पर भी कैसे बाबा। लेकिन ये तो चलो चिड़िया की बात है, नॉन हार्मफुल प्राणी है, लेकिन एक बार यहाँ जहाँ हमारी डिस्पेंसरी है वहां पर बस एक सांप निकल आया, बहुत बड़ा, तब तो ये सब कच्चा था, कोई पक्का नहीं था, तो कुछ जो भी भाई लोग यहाँ थे वो एकदम एक डंडा लेके आए और कुछ भाई सांप को देखने लगे, पकड़ने लगे, एक ने उसके ऊपर डंडा रख दिया तो सांप कंट्रोल में तो आया, लेकिन फुंकार रहा था, बहुत बड़ा वो था। इतनी देर में बाबा आए उधर से किचन की तरफ से, तो सबने कहा बाबा ने भी पूछा क्यों बच्चे क्यों भीड़ लगा रखी है, तो बताया कि बाबा ये सांप है। तो बाबा का देखो नेचुरल था हर एक के लिए, जैसे चिड़िया के लिए ये बच्ची ऐसे, अरे रे बच्चे को मत मारो कष्ट नहीं दो, मटका मंगवाया बाबा ने और बोला कि इसको पकड़ करके उसने जंगल में छोड़ के आ जाओ बंदा। एक भाई को बोला, हमारे जयपुर में एक बलदेव भाई होते थे उन दिनों यहाँ थे, तो उनको बोला कि बच्चे इसे पकड़ो, तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगा क्योंकि कोई सांप का तो ऐसी बात है ना अनुभव नहीं, तो बाबा ने कहा अरे बच्चे कोई नहीं चलो बाबा करता है, तो वो आगे बाबा बढ़े तो सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं आप इधर रहो, तो बलदेव भाई को भी हिम्मत आई, उन्होंने वो पकड़ा सांप को, देखा बिल्कुल सांप जैसे कि ना एकदम शीतल जैसे, जब बाबा आए बाबा को देखा पहले बहुत इधर उधर हो रहा था, बाद में एकदम शांत हो गया शीतल हो गया, बाबा ने थोड़ी सी ना उसको जैसे हम लोग तो जानते दृष्टि दी जैसे, एकदम शांत हो उसको पूंछ से पकड़ा, मटका मंगवाया गया उसमें डाला, ऊपर कपड़ा बांधा और फिर उसे जंगल में छोड़ा है। तो ये जो महान आत्माएं होते हैं ये प्रकृति को भी वश में कर लेते हैं प्रैक्टिकली। ऐसे तो बहुत केस यज्ञ में बताती हैं दादियां वगैरह, लेकिन ये तो जो हमारी आंखों से देखे हुए वो बताया। और उसके बाद वो छोड़ के आ गए। है छोटी सी बात, लेकिन आत्माएं जो हैं, बाबा मन जीते के तो बहुत उदाहरण है, लेकिन प्रकृति ऐसे ऐसे प्राणी भी जिनको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सन्यासी जंगल में जाते थे और शेर भी आता था वो भी एकदम अहिंसक होके बैठ जाता था आदि आदि, तो वो बातें जो है प्रैक्टिकल में यहाँ भी देखने को मिली। और अंत में मैं प्रकृति जीत की एक दो बात सुना के पूरा करता हूँ कि जब बाबा का शरीर जो है रखा रह गया और प्रकृति से बना, पांच तत्वों से बना ये शरीर है, तो अगर हम भी प्रकृति के वशीभूत होकर के हमने भी शरीर छोड़ा तो क्या किया? ये तो पूरा संसार ही छोड़ता है। अर्थक्वेक आया बस उसमें मर गए, फ्लड आया उसमें चले गए, सुनामी आई, हम भी अगर उसमें शरीर छोड़ दिया तो हमारे और दुनिया वालों में क्या अंतर रहा? लेकिन ब्रह्मा बाबा जो भीष्म पितामह है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का भीष्म पितामह को वरदान था, तो ब्रह्मा बाबा को भी ये देखा जैसे भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु। बाबा को जैसे पहले से आभास हो गया था कि हाँ आज ये मेरा अंतिम दिन है 18 जनवरी, तो बाबा ने रहे हुए सारे पेंडिंग काम भी एक तो पूरे किए और अंतिम मुरली चलाई, नहीं तो वो मुरली भी नहीं चला पाते। सब बच्चों को डायरेक्शन भी दी, भोजन करके आओ, क्योंकि अगर भोजन न किया होता नॉर्मली कि चलो आज तो बाबा की मुरली जल्दी है 7 बजे और रोज 8 बजे खाते हैं तो रह जाता सबका। तो इस रीति से हमें भी ये सुन करके ही केवल प्रसन्न नहीं हो जाना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के लिए जो कहा है ना, ब्रह्मा बाबा जो हम सब बच्चे भी क्या हैं, ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा प्रकृति जीत होकर के, जो प्रकृति के पांच तत्वों का, तो हम भी कैसे प्रकृति जीत होकर शरीर छोड़े? सबसे पहले तो इच्छा मृत्यु, हाँ, कि हम अपने संकल्प से शरीर छोड़े। ये नहीं कि कोई परिस्थिति आई जो भारत में आनी है प्रकृति के तत्वों की, नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? केवल एक बात बताएंगे एक तत्व की, कि मानो कोई अर्थक्वेक, बाबा ने कहा ना यहाँ तो अर्थक्वेक की बहुत परिस्थिति आनी है, तो अर्थक्वेक की परिस्थिति आएगी और उसमें अगर हम मर गए तो वो तो लास्ट टाइम तो त्राही त्राही मची हल्ला मचा होगा, खून खराबा होगा, ऐसे में अंतमते सो गति हमारी कैसे अच्छी होगी? तो उसके लिए बाबा ने कहा है ये तत्व जो है ना, इन तत्वों को अपना मित्र बना लो। तत्व को मित्र बना लोगे, तत्व के साथ तो मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है, वो कभी उसके प्राण नहीं लेता। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है, कौन सा गुण है पृथ्वी तत्व में? सहनशीलता। हाँ हाँ, पृथ्वी हमेशा देती है, दाता है। पृथ्वी से देखो गेहूं चावल पूरा अन्न पेट्रोल पानी सब कुछ मिलता है जीवन के लिए जो जरूरी है। तो ऐसे ही हम भी दातापन का अगर गुण धारण कर लेंगे, हमारे सम्मुख कोई भी आए हम वो खाली हाथ ना जाए। और दातापन माने स्थूल चीज की बात नहीं है, दाता मन उसे प्रेम दे, सहयोग दे, उसे शांति शुभ भावना शुभकामना का दान, वो इस चीज का अनुभव करके जाए कि यहाँ आके जैसे मुझे बहुत शांति का शक्ति का सहयोग मिल रहा है। दातापन का ये गुण धारण किया होगा, और भी बहुत गुण है पृथ्वी में, सहनशीलता आदि आदि, लेकिन वो सब गुणों को हम धारण करेंगे तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। अंत समय में बाबा ने कहा है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, बच्चे बस मुझे यूज नहीं करते, मैं बच्चों का इंतजार करता रहता हूँ, बच्चे मुझे यूज करें, मेरा आवाहन करें और मैं जाऊं बच्चों की रक्षा करूं, लेकिन बच्चे यूज नहीं करते मुझे। तो एक तो ये करे कि हमारे पैर ऑटोमेटिकली वहीं बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, बाबा सिग्नल भेजता है, हम उस सिग्नल को कैच करके बस चल पड़े सेफ्टी के लिए। ऐसे ही जल का क्या संस्कार होता है मुख्य? शीतलता। जल का और भी बड़ा संस्कार है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। जल को देखो, गिलास में लिया, गिलास में सेट हो गया, थाली में लोगे थाली में हो जाएगा, कटोरी में लोगे कटोरी में, चम्मच में लोगे चम्मच, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट की शक्ति। ऐसे हमें भी अगर एडजस्टमेंट की शक्ति होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम हर एक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ये न कहे कि भाई इसके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, इसके साथ मुश्किल है, नहीं। हर एक के साथ हम फ्लेक्सिबल एडजस्ट होके चल सके तो क्या होगा, जितने भी फ्लड आएंगे, सुनामी आएगी, वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही वो जल तत्व, ये देवी देवता है, चैतन्य में इनकी पूजा होती है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती माता आदि आदि, तो ये हमें सिग्नल देंगे अगर हमने अपने संस्कार इनसे मिलाए हुए होंगे ये सिग्नल, और वो सिग्नल को पकड़ के हम बस सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ेंगे जहां पर ये होगा। तो एक ये ऐसे आकाश तत्व का मुख्य गुण क्या है? विशालता। विशालता में ऐसे हमारा भी बस विशालता हो, फिराक दिल हो, किसी की कमी नहीं देखें, और जैसे बाबा मम्मा में देखा, महान आत्माओं में क्षमा का गुण होता है, ऐसे वो क्षमा का गुण, कोई आत्मा हमारे लिए कितना भी बुरा करे लेकिन हमारे मन में उसके लिए बदले की भावना ना हो। ऐसे ही अग्नि का कौन सा गुण होता है? सूर्य जो होता है ना, तो वो अग्नि का गुण, उसमें क्या मुख्य गुण होता है? रूप परिवर्तन करने। अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसी हमारा भी योग अग्नि ऐसी प्रज्वलित रहे कि कोई भी आत्मा आए, बाबा ने कहा अंत में दुखी आत्माएं आएंगी, बस आपका रूप देख के सुख के सागर में लहराती हुई चली जाएंगी, अशांत आत्मा आए शांति की अनुभूति करती हुई चली जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, ये अग्नि का है। और लास्ट तत्व कौन सा रहेगा? वायु। वायु में कौन सा गुण होता है? हल्का भी होता है, और वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। देखो पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु ऊपर उठाती है, विपरीत गुण है लेकिन सह अस्तित्व, प्रकृति के अंदर दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसी ऊपर गर्मी सूर्य है, बहुत अति गर्मी, और जल भी ऊपर ही है, वायु जो बादल है, दोनों विपरीत गुण वाले हैं, जो अग्नि को बुझाने के लिए जल का प्रयोग, लेकिन फिर भी सह अस्तित्व। ऐसे हम रहे संसार में, परिवार में विपरीत गुण वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सह अस्तित्व की भावना हो, उनके साथ रह करके चले, तो क्या होगा, ये प्रकृति जीत भी हम ब्रह्मा बाबा की तरह बन जाएंगे। और जब प्रकृति जीत बन जाएंगे तो अंत में हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा। और जब इच्छा से शरीर छूटेगा तो क्या होगा? विजयी होकर के जाएंगे, त्राही त्राही नहीं होगी, बल्कि हाँ बाबा बस अब मैं आया कि आया, आपके साथ चल रहा हूँ, और विजयी होकर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। अच्छी तरह ताली बजाइए। मन जीत, निद्रा जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत, सारी चाबियां आपको भाई साहब ने सौंप दी हैं, और आपकी चाबियां, हाँ आपकी विल भी सुपुर्द करा दी है। किसको? बाबा को। बाबा को सुपुर्द की माना, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है और जिससे आपको बाबा मुक्त करना चाहता है, तो आप सहज हो जाएंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। संपन्नता ही कर्मातीत स्थिति का आधार है, और कर्मातीत होने के लिए हमें इतनी सुंदर, मन कर रहा है अभी और सुनते रहें, ठीक है, अभी बाबा की याद में बैठते।